इसके बाद मक्का वालों को एक और नेमत की तरफ इशारा दिलाया गया, अवलम यरव, क्या उन्होंने हकीकत को गौर से नहीं देखा, उनको नहीं पता क्या, अन्ना जालना हरमन आमिनन, कि हमने बना दिया हरम को अमन वाला, वयुतखत्तफुन्नासु मिन हौलिहिम, के उचक लिए जाते हैं लोग इसके इर्द गिर्द से, यानी मुराद क्या है कि इर्द गिर्द से सारे ही लोग इधर आ जाते हैं, जो इधर उधर होते हैं वो भी इसके करीब आने लगते हैं। अल्लाह ताला ने इस शहर में इतनी बरकतें रखी, इतना अमन रखा, बताओ अफबिल बातिल युमिनून, क्या वो बातिल पर ईमान लाते हैं, व बिनेमतिल्लाहि यकफुरून, और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करते हैं। क्या ख्याल है इनका कि क्या ये बातिल पर ईमान लाएंगे, क्या किसी लात ने या हुबल ने या मनात ने, किसी देवी ने, किसी देवता ने ये घर बनाया। देखिए कि दो चीज़ें हर दौर में इंसानियत की तलब रही हैं, एक है रिस्क और एक है अमन। इसी का तस्करा सूरत इलाफ में भी है, ली इलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सईफ अल्लज़ी यतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, कि वो ज़ात जिसने इनको भूख में खाना दिया और खौफ में अमन दिया। मक्का वालों को हरम की वजह से ये दोनों नेमतें मिली हुई थी। पीछे भी बात हुई कि खाना काबा की वजह से इर्द गिर्द के लोग इधर आते, ये तिजारती मंडी बन चुकी थी, लोग कारोबार करते, उसी बैंक की मईशत चलती थी। दूसरा, हरम की वजह से लोग इस पे हाथ नहीं उठाते थे, चोरी चकारी डकैती कत्ल गारत, इससे ये बचा होता। अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बात का लिहाज नहीं आता कि जिस रब ने अपना घर तुम्हारे शहर में बनाया, अपना नबी तुम्हें दिया, तुम उसके ही मुनकिर हो गए हो, तुम्हें ये एहसान याद नहीं है। पूरे मुल्क में कहीं अमन नहीं, हर तरफ लूट खसूट की गर्म बाजारी है, किसी की जान किसी का माल महफूज नहीं। अल्लाह ने तुमको हरम शरीफ का पड़ोसी बनाकर क्या हर तकलीफ से नहीं बचा लिया, उसको छोड़कर तुम 360 बुतों को अपना खुदा और माबूद बनाते हो, क्या इससे भी बड़ा कोई नाशुक्रा हो सकता है, इससे भी कोई ज़्यादा बड़ी नाशुक्री कर सकता है। अब आप देखिए कि ये बात तो थी मक्का वालों के लिए, अगर आज वालों को देख लें तो अल्लाह ताला ने ये जो बात कही कि क्या तुम बातिल पर ईमान लाते हो और अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हो, तो अगर इसको हम अपने दीन के मामले के साथ देखें तो क्या आज अक्सरियत की यही हालत नहीं है। बातिल क्या कुछ है, हर चीज़ हक के सिवा जो होती है वो बातिल होती है, और हक है अल्लाह की ज़ात, हक है अलहक उसका नाम है, अल्लाह की किताब अल हक है, कुरान में भी ये तस्कर आता है, अल्लाह का नबी हक लेकर आया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल खुदा व दीनिल हक की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, तो अल्लाह की ज़ात हक, रसूल हक, किताब हक, जन्नत हक, जहन्नम हक, एक हदीस में ये सारे लफ्ज़ हैं कि नारु का हक कुन व जन्नतु का हक कुन। अब ये सारे हक एक तरफ और उसके मुकाबले में बातिल पर ईमान, दुनिया का बातिल ही है ना जिसके पीछे दुनिया के अंदर इंसान रुस्वा होता है, तो ऐसे लोगों को फिर ना शुक्रे लोग नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। किस तरीके से अल्लाह ताला ने इज्जत दी इनको, और इसके नतीजे में फिर इन्होंने जो शिर्क किया उस पर फिर अगली बात आ गई कि वमन असलम मिम्मन इफ्तरा अल्लाही कज़िबा, और कौन ज़्यादा ज़ालिम है उस शख्स से जिसने अल्लाह ताला पर झूठा बुख्तान लगाया। इफ्तरा फरिया से चमड़े को सीने को कहते हैं, बाब इसमें जब ता आ जाती है ना तो इफ्तरा बन जाता है, लेकिन असल में लफ्ज़ फरियन होता है। झूठ खड़ने से क्या मुराद है, यानी किसी को करनी वाला कहना, किसी को बेटे देने वाला, किसी को अल्लाह का शरीक बना देना, किसी को अल्लाह का बेटा, किसी को बेटी, कभी फरिश्तों को कुछ कह देना, इस तरह की बातें कर करके ये ना शुक्रिया करते हैं। कहा औकज़ब बिल हक़्क़ी लम्मा जाअहुम, या हक को झुटलाया उन्होंने जब वो उनके पास आया। हक से मुराद फिर वो दोनों बातें आएंगी, कुरान उनके पास आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी हक थी क्योंकि वो अल्लाह ताला के पैगम्बर थे। यानी इन्होंने रसूल के साथ क्या किया, इन्होंने अल्लाह के नबी की ज़ात के साथ क्या किया, इनका हाल वही नहीं है कि जब भी हक इनके पास आता है ये हक से मुंह मोड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या नहीं है जहन्नम में ठिकाना कुफार के लिए। यहाँ देखिए कि सवालिया अंदाज है, लेकिन मतलब यह है कि ऐसा ही होगा। ना मानो, दुनिया में जो करते हो करते रहो, अपनी मर्जी से बातें करो, तुम्हें यह हक अच्छा नहीं लगता, ये दीन अच्छा नहीं, ये कुरान अच्छा नहीं, ये रसूल अच्छा नहीं, तो अब जहन्नुम में आराम फरमाओ, तुम्हारा असल ठिकाना वही है। और फिर आखिरी आयत, जिसको अगर आप पहली आयत से जोड़ेंगे तो आपको पूरी सूरत का थीम समझ में आ जाएगा कि वल्लसीना जाहदूफीना, और जो बुलंद हिम्मत मेहनत करते हैं, मसरूफ़ जिहाद रहते हैं, मुजाहिदा करते हैं, कोशिशें करते हैं, कहाँ, फीना, हमारे रास्तों में, हमारे मामलात में, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम ज़रूर अलबत्ता दिखाएंगे उनको अपने रास्ते, वइन्नल्लाह लमाल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला मुहसिनीन के साथ है। पहली आयत क्या थी सूरत की? अहसिबन नासु अन युतरकु अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान किया है कि वो छोड़ दिए जाएंगे सिर्फ ये कहने पर कि हम ईमान लाए, और क्या उनकी आजमाइश ना होगी। पहली आयत में अल्लाह ताला ने ईमान की मुश्किलात का तज़किरा किया, फिर आयत 6 में फरमाया वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, ये जा को लंबा करेंगे तो ही सही होगा वरना मानी बदल जाएगा, क्योंकि जुहद और होता है, जहदा और लफ्ज़ है, जहदा का मानी उस एक शख्स ने जिहाद किया या मेहनत की, और जाहदा अलिफ जो आ जाती है ना, तो इसमें किसी के मुकाबले पे, मसला आप देखिए उर्दू में एक लफ्ज़ है मुआशरा, मुआमला, मनाजरा, मुकाबला, मुबाहला, क्या हो रहा है इसमें, कोई एक बंदा इनमें से कोई काम नहीं कर सकता। मुआशरा बहुत सारे लोगों का होता है, मुकाबले में भी यही दो लोग होते हैं कम से कम, मुनाजरा आमने सामने बैठ के होता है, मुबाहला। तो जब भी अरबी ज़ुबान में ये साउंड आती है ना आ, जैसे जहदा में जहदा, अशरा में अशरा, तो इसमें इंटेलेक्चुअल सबके साथ मिलकर इंटरेक्टिव होता है। जहदू में सिर्फ मेहनत नहीं है, मुकाबले पे मेहनत, आजमाइशें रास्ते में आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, फिर भी डटे रहे। वल्लज़ीना जाहदू, मसलन आप देखिए एक शख्स मुसलमान होता है, इस्लाम के रास्ते में मुश्किलात आई, कोई इतनी ख़ास नहीं है, बस अंदर की थी, ठीक है, उसको अपने नफ्स को दबाना पड़ा, शैतान को डराना पड़ा, फिर कुछ ना कुछ मुआशरे से बात हुई, उसका जिहाद छोटा है, लेकिन जो शख्स इस्लाम की तरफ आता है उसके सामने बड़ा नफ्स है, बड़ा बुत है, बड़ा मुआशरा है, बड़ा शैतान है, तो उसका जाहदू। दीन के काम करने वाले दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जिनको ना सिर्फ ये कि उस काम करने पे मुखालफत नहीं सामने आती बल्कि अप्रिसिएशन मिलती है। देखिए हर एक के हालात फ़र्क है, अल्लाह ताला ने हम सबको एक माँ और एक बाप से नहीं पैदा किया, हर एक का हालात फ़र्क है, माहौल फ़र्क है। हर बीवी जो किसी भी शौहर की ज़ौजियत में है, जब वो अल्लाह की तरफ आती है तो वो एक जैसी नहीं होती। एक शौहर हैं जो तमन्ना रखते हैं कि हमारी बेगम जाएं और अल्लाह के लिए कुछ करें, सीखें, अपने आप को तैयार करें, सोसाइटी को फ़ायदा दें। एक वो शौहर हैं कि वो कहते हैं कि मेरी बेगम सिर्फ मेरी ही खिदमत करती रहे। दोनों की कोशिशों में फ़र्क होगा, अल्लाह किसको कितना रास्ता दिखाएगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना, चलते जाओ, कोशिश करते जाओ, हम लनहदियन्नहुम सुबुलना। इतनी खूबसूरत आयत है, कम अज़ कम मैं तो कासिर हूँ इसकी तफसीर करने से, और अगर सिर्फ इस एक बात को हम समझ जाए ना, तो हम अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलात को अपने लिए नेमत समझें। ये माइलेज स्टोन्स हैं अल्लाह के दीन के कामों के रास्ते में। अल्लाह के दीन का काम तो ये भी है ना कि आप अपनी नमाज ठीक कर रहे हैं, आप अपना कुरान ठीक कर रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द वालों को सही बताना चाहते हैं। इसके मुख्तलिफ एंगल होते हैं, जहाँ जिस दर्जे की कोशिश होगी, जो लोग अल्लाह के रास्ते में चलेंगे इखलास के साथ, कशमकश ज़रूर होगी। पूरी दुनिया से एक किस्म का ख़तरा मोल लेने वाली बात है, आप कह लें कि भेड़ों के छज्जे में हाथ डालने वाली बात है, अल्लाह कहता है हम ऐसों को छोड़ेंगे भला, उसी हाल पे छोड़ दे जिस पे तुम हो, ये कैसे हो सकता है। एक मानी इसका क्या है, लनहदियन्नहुम सुबुलना का, कि जो लोग अल्लाह के रास्तों में कोशिशें करेंगे ना, अल्लाह उनको तनहा नहीं छोड़ता, अल्लाह उनको मुआशरे के रहमो करम पे नहीं छोड़ देता, अल्लाह उनकी मदद करता है। मुराद लनहदियन्नहुम का कि हम उनको तनहा नहीं छोड़ते, हम उनका साथ देते हैं, उनके रास्ते की रुकावटें दूर कर देते हैं, उनके ऊपर जो लगते हैं इल्ज़ाम उनको हम गलत कर देते हैं साबित। इसी तरह लनहदियन्नहुम सुबुलना का एक मतलब क्या है कि फिर अल्लाह दुनिया और आखरत के वो रास्ते उनको दिखाता है जिन पर चलकर अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। उनको खुद ही पता लगने लगता है कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। अल्लाह राहें खोल देता है, अल्लाह रहनुमाई करता है, कदम कदम पर उनको बताता है कि मैं तुमसे खुश हूँ, हमारी खुशनुदी इस तरह हासिल करो। हर मोड़ पर रोशनी की एक टार्च लेकर अल्लाह ताला उन बंदों को रास्ते दिखाते हैं, देखो इधर ना जाना, इधर आ जाओ। ये वही बात है जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, फल हमहा फजूरहा व तक्वाहा। हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने फजूर गुनाह को देखने का मिजाज भी रखा है और नेकी के रास्ते भी दिखाए हैं। पीछे हम एक आयत भी पढ़ चुके हैं ना, जो इंसान जिस तरफ जाना चाहता है अल्लाह ताला उसको वही देता है। मन जद्दा वजद्दा तो हदीस है ना कि जिसने कोशिश की वो पाएगा। सूरत अल अनफाल में हमने एक आयत पढ़ी थी कि वल्लाहु यहूलु बैनल मरी व कल्बी, अल्लाह बंदे और उसके दिल के बीच में हायल हो जाते हैं। कि जब बंदे का दिल अल्लाह से हटता है ना, या अल्लाह के दीन से हटता है ना, तो अल्लाह उसके लिए दिन ब दिन उस काम को मुश्किल कर देते हैं। यह आयत बिल्कुल उसका अपोजिट है, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम फेर देंगे जो फेरेगा। यकीन करें कि ये वो चीज़ है जो इंसान को हर चीज़ से बेनियाज करती है। अल्लाह ताला ने पूरी सूरत में आप देखिए आजमाइशों की बात की, घर घर की कहानी थी, कहीं बेटा अल्लाह के नबी के साथ था, कहीं बीवियाँ आ जाती थी, कभी शोहर थे। पूरा सोशल सेटअप ऐसे लगता था कि घर टूट रहे हैं बज़ाहर दीन की वजह से। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मेरे नाम पर तुम्हारे घर टूटे, मेरे नाम पर तुम्हारी औलादें तुम्हारी मुँह जोर हो गई, ऐसा नहीं होता। बात यह है तुम अभी समझे नहीं, तुम्हें सही रास्ता नहीं आता। मुझे इस आयत को पढ़ते हुए फीलिंग्स आती हैं कि जैसे कोई गाड़ी में बैठा है और उसको एक ख़ास जगह पे पहुंचना है, रास्ता नहीं मिल रहा था, इधर जाऊं उधर जाऊं, एक साइन कुछ लिखा हुआ है, दूसरे साइन पे कुछ और लिखा है, तीसरे पे कुछ, कोई इधर बुलाता है, कोई इधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है, और इतने में दूर से उसको एक टार्च दिखती है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुला लिया था ना कि मूसा इधर आओ, इन्नी अनल्लाह, मैं हूँ तुम्हारा रब। मूसा तो घरदारी के कामों में थे, वो तो अपनी बीवी के आराम की कोशिशों में थे, लेकिन अल्लाह ने उनको नबुव्वत दी, लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह को पता था कि मूसा अब उस मुकाम पे पहुँच चुके हैं कि जिसमें हालात के थपेड़ों में अब अल्लाह के दीन के तकाज़ों को निभाने के काबिल हो गए, और 10 साल वादा पूरा करके उन्होंने कमिटमेंट निभाना भी सिखा दिया। अल्लाह ने उनको नबूवत दे दी। उम्मे मूसा को अल्लाह ने आजमा लिया कि ये माँ सह जाएगी बच्चे का मौजों के ऊपर टलना, अल्लाह ने उसको उस आजमाइश के लिए चुन लिया। बीबी मरियम के बारे में अल्लाह को यकीन था कि ये बच्ची अपनी इस्मत की हिफाजत करने वाली है, इसके ऊपर अगर ये इल्ज़ाम लग भी गया तो ये दीन से नहीं हटेगी, और अल्लाह ने इनको चुन लिया। और हकीकत यह है कि ये वो इंतखाब है जो अल्लाह हर एक का नहीं करता। आखिरी लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, अल्लाह साथ है मुहसिनों के। मुहसिन कौन होते हैं? तक्वे का आखिरी दर्जा है एहसान। मुख्तलिफ दर्जे होते हैं ना किसी काम के, एक पहली सीढ़ी है फिर एक आखिरी है, मंजिल तो आखिरी सीढ़ी पे जाके मिलती है ना। तकवा पहली सीढ़ी है तो एहसान आखिरी सीढ़ी है। कहा कि इबादत ऐसे करो गोया के तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम उसको नहीं देख रहे तो वो तो तुमको देख ही रहा है। ये है एहसान, खुली आंखों से अल्लाह दिखे, और जिसको वो दिखने लगता है ना उसको दुनिया की तकलीफें फिर मुश्किल नहीं लगती। फिर कोई रूठे कोई मने उसकी बला से एक ही जैसा है, कोई तारीफ करे या तनकीद करे उसी पे। और जो बंदा जिस दिल से कोशिशें करता है अल्लाह वो रास्ते खोलता है जो कभी तस्वुर में भी नहीं होते। यकीन करें अगर आप अपने अंदर ये सिफत ले आए ना मुहसिनीन वाली, कोशिश कर सकता है इंसान, दावा तो कोई भी नहीं कर सकता कि मैं मुहसिन बन गया हूँ, लेकिन तलब सच्ची हो, इखलास हो, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे अमल हो, रास्ते अल्लाह दिखाता है। वहाँ से रास्ते बनेंगे जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होता। अल्लाह तो है ही वो है जो समंदरों में रास्ते बना देता है। अल्लाह चाहते तो मूसा को कोई ऐसा रास्ता दिखा देते जहाँ बीच में समंदर ही ना आता, क्या बड़ी बात थी। आज मौजूद है ऐसे रास्ते, तब भी होते, لیکن اللہ نے کہا نہیں, آؤ دریا کے سامنے, میں راستے بناؤں گا. کیوں؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اگر موسیٰ عصا نہ مارتے یا عصا مارنے کے باوجود جاتے ہی نہ اندر کہ نہیں کیا پتا بھی یہ پانی پگھل جائے, تو نہیں تھا دکھنا. توکل, جتنا اللہ کی ذات پہ توکل, اس کے وعدوں کا یقین ہوگا, اتنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان کر دے گا. تو سورت کا پیغام یہی ہے کہ محسن بنو, دین کے راستے کی بڑی سے بڑی مشکلات چھٹ جائیں گی. اور دین کے راستے میں مشکلات آنا کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں کہ یو آر سلیکٹڈ. دیکھیے کہ آپ کوئی بھی کسی اچھی سی جگہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کا کرائیٹیرین ہوتا ہے, گاہے بگاہے آپ کو ان کی طرف سے ای میلز آتی ہیں, ان کی طرف سے میلنگ میں کچھ چیز آ جاتی ہے, آپ کہتے ہیں گویا کہ ابھی بھی میں لسٹ پہ ہوں. اگر کسی طرف سے آپ کو کافی عرصہ کوئی پیغام ہی نہ آئے, تو کیا پتہ چلتا ہے کہ لگتا ہے کہ میرا نام اس کمپنی کے ساتھ نہیں رہا, میرا خیال ہے میرے سے اوپر اور لوگ آ گئے. بالکل اسی طرح اللہ کے راستے میں اگر آزمائشیں نہ آئیں تو فکر کی بات ہے, ختم. کفر پہ جائے انسان, کوئی 5 دفعہ نماز کے لیے نہیں بلائے گا, کوئی روزے نہیں رکھائے گا, کوئی حج کی کال نہیں دے گا, لیکن ملا کیا؟ اندھیرے. اس کے برعکس جب بندہ مومن ایگریمنٹ پہ سائن کرتا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہے, تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو راستے دکھاتے ہیں. اس آیت کے بارے میں ابو درداء کہتے ہیں, اللہ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے, جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں, ہم ان پر دوسرے علوم بھی کھول دیتے ہیں جو اب تک حاصل نہیں تھے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں, جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں, ہم ان کے لیے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں. یعنی علم حاصل کریں گے نا تو عمل بھی آسان ہوگا. اب دیکھیں, یہ ہے اس کی وہ تفسیر جو آپ کو بالکل سمجھ آتی ہے. بعض لوگ جو ایک باطل نظریہ پیش کرتے ہیں حلول کا, جانتے ہیں آپ اس کو, وہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے اندر اللہ حلول کر جاتا ہے. یہ بزرگ پہنچے ہوئے ہیں, وہ اس آیت کو کیسے لیتے ہیں؟ اب ذرا شعور سے سنیے گا, کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی, بعد میں کہیں کہ یہ بھی ہمیں قرآن میں پتہ چلا. وہ کہتے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ, لما آ, یہاں لا الگ ہے نا, لام البتہ اور ما آ میں نے ساتھ, وہ اس لما آ کو ایک ہی لفظ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں لما آ کا معنی ہوتا ہے چمک, جیسے شعلہ. ان اللہ, بے شک اللما روشنی بن جاتا ہے المحسنین محسنین کی. یعنی اتنی گھما پھرا کے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ محسنین کے اندر اپنی چمک ڈال دیتا ہے, اپنا نور ان کے اندر ڈال دیتا ہے. تو اس سے بدترین تعویل کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے بات کو سننے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ کے راستے میں جتنی مشکلات آئیں, جتنے کانٹے بچھائے جائیں, کتنی تکلیفیں آئیں, انسان اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہماری قدر کر سکے. دنیا میں بھی ہم بہت سارے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, ہم بہت ساروں کو محبتوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں, لیکن لوگ اتنی قدر نہیں کرتے ہماری. یہ جو لفظ یہاں فرمایا جا رہا ہے نا, فی نا, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں, یہ رہ گیا تھا. ہر کوشش کا مقصد اللہ کی ذات ہو, کوئی دنیاوی فائدہ نہیں, کوئی ناموری نہیں, حب جاہ یا حب منصب نہیں, ساری جد و جہد صرف اللہ کے لیے ہو. جہاں ہماری نیتوں میں فتور آتا ہے نا, وہاں اللہ کی مدد چلی جاتی ہے. جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے اور پڑھائیں گے, مثلا کیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا اللہ کے لیے, آپ کہتے ہیں میں اللہ کی مرضی سمجھ آئے, پھر میں اس مرضی کے مطابق خود کو ڈھالوں اور دوسروں کی مدد کروں, یہ ہے پورا پیکج. جہاں اس میں آپ کی ذات آ جائے گی نا, میں چمکوں, میں روشن ہوں, میں نمایاں ہوں, میرے نمبر اچھے آئیں, میرا یہ معاملہ, وہی ہرڈلز آئیں گی. بعض دفعہ جو ہمیں رکاوٹیں آتی ہیں نا, جب ہم روک لیے جاتے ہیں حالات کی وجہ سے, اس کے اندر ہمارا کوئی ایک وائرس ہوتا ہے دماغ میں آیا ہوا, ہم کہتے ہیں اللہ مدد ہی نہیں کر رہا, ہم نے تو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتے ہیں. وہ کب کرتے ہیں؟ فی نا, ہمارے معاملے میں, ہماری رضا کے لیے, ہمارے دین کی سربلندی کے لیے, ظاہری باطنی دشمنوں سے برسرے پیکار رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے راستے دکھاتا ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, سبل جو ہے نا, یہ سبیل کی جمع ہے, اور سبیل کہتے ہیں وہ چیز جو ایک کو دوسرے سے ملا دے, जैसे रस्सी है ना, एक सिरे पे एक कहता है, दूसरे सिरे पे दूसरा है। कोई उस रस्सी पे चलेगा तो पहुंच जाएगा ना। तो सबील या सुबुल वो रास्ता जो मंजिल तक बासानी पहुंचा दे। ये क्यों नहीं कहा कि लनहदियन्नहुम सबीलुना? क्यों अल्लाह के नबी सल्लम ने एक मौके पे फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाएगा। बाबू रैयान से कसरत से रोजे रखने वालों को बुलाया जाएगा, बाबू सदका से सदका देने वालों को, यानी जिसकी कोई भी खूबी होगी ज्यादा हाईलाइटेड किस्म की उसको उससे बुलाया जाएगा। तबू बकर ने पूछा, अल्लाह के नबी को ऐसा भी होगा जिसको 8ों दरवाजों से बुलाया जाए? तो कहा, हाँ अबू बकर, तू उनमें से होगा। तो सुबुलाना का मतलब क्या है कि अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते फर्क होते हैं। कोई कसरते सयाम से अल्लाह तक पहुंच जाता है, कोई कसरते तबलीग से अल्लाह तक पहुंचेगा, कोई हलाल हराम में बहुत क्यूरियस होगा, कोई मामलात में खूबसूरत होगा, कोई हुकुकुल इबाद में होगा, कोई शुक्र के रास्ते अल्लाह को पाएगा, कोई सब्र के रास्ते अल्लाह को पाएगा, कोई आजमाइशों में जम के अल्लाह को पाएगा, कोई नेमतों के अंदर शुक्र गुजारियों के साथ अल्लाह को पाएगा। असल बात है कि अल्लाह अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह, आपकी हर चीज़ के बीच में अल्लाह। खाना पीना पकाना, घर सजाना साफ करना, मैं मुसलमान, मैं अल्लाह की बंदी, मैं अल्लाह की नुमाइंदा दुनिया में, मैंने लोगों को अल्लाह तक लेके जाना है। ये वो कैफियत होती है कि जिससे इंसान वाकई हर चीज़ में अल्लाह ताला का बंदा बन जाता है। बिल्कुल दुनिया में चलता वो अल्लाह ताला का एक नुमाइंदा बन जाता है। ये है असल वो खिलाफत जिसका तذکرہ आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में आता है। और वह इन अल्लाह में जो लफ्ज़ इन्ना है ना, ये ताकीद के लिए आया है, यानी थोड़ी और ताकीद है। फिर लमा, मा से पहले जो लाम है ये लामे ताकीद है, यानी कन्फर्म डेफिनेटली अल्लाह ताला ने इसको डन कर दिया, किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही ना रहे कि माल मुहसिन अल्लाह मुहसिन के साथ है। शैतान बहकाए, नफ्स बहकाए, मुआशरा भड़काए, लेकिन इंसान के मुझे इसकी परवाह नहीं क्योंकि मेरा रब मुझे काफ़ी है। तो यहाँ पे सूरत अलनकबूत पूरी होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने रास्ते पे जमने वाला बना दे, हर किस्म की मुश्किल को हम अपने लिए के नाम समझें, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा समझें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।